जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रास बिहारी राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोक श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन दे रहे थे ना पिछले 2-3 दिनों से, तो प्रभुपाद जी के बारे में कोई चर्चा हुई थी क्या 13 तारीख को जब वो जलदूत से रवाना हुए थे उसके बारे में कोई चर्चा हुई थी? गुरुवार की सारी लीला बताए प्रभुपाद जी कैसे गए थे वगैरह। कब आज क्या है आज? अच्छा तो 2 दिन पहले इसकी चर्चा हुई थी सुबह भागवत क्लास में हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबको देख के बड़ा आनंद हो रहा है, ब्रह्मचारियों का सागर लग रहा है। ऐसे आप में से कितने भक्त हैं जो अभी तक ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं हैं परंतु मन में इच्छा है कि ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करें एक दिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप सब कौन से, कहाँ रहते हो? आश्रम में नहीं हो? पीटीए में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा। ये जीवन हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 24 घंटे भगवान की सेवा हो सकती है। जब बाहर दुनिया में रहते हैं तो उस समय हमारा काफी समय अन्य चीजों में जबरदस्ती चले जाता है, फिर आमदनी के बारे में सोचना पड़ता है, परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचना पड़ता है, और कई ऐसे सामाजिक समस्याएं इनमें उलझना पड़ता है, और अधिक समय भगवान की सेवा के लिए नहीं दे पाते हैं ना। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में 24 घंटे भगवान की सेवा के लिए हमें अवसर मिल जाता है। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में बताते हैं ना, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजेत तदनुराग जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो सदुपदेश होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सद उपदेश मतलब अच्छे उपदेश, उपदेश कई प्रकार के हो सकते हैं, बुरे प्रकार के उपदेश भी हो सकते हैं। अधिकतर दुनिया में आजकल बुरे प्रकार के उपदेश सबको मिल रहे हैं, विज्ञापनों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, सिनेमा आदि के द्वारा, ये सारे जितने भी इंटरनेट मोबाइल फोन इनके द्वारा जहां भी जाएं कोई अच्छे उपदेश आजकल नहीं मिल रहे हैं, सद उपदेश नहीं मिल रहा है। सद उपदेश मतलब अच्छा उपदेश, परंतु अच्छा उपदेश क्या होता है? सत मार्ग पे चलने वाला जो उपदेश जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो मदद करे वो है सत उपदेश। तो अच्छा का मतलब है जो सत है, सत उपदेश ना, तो सत मार्ग जो सत्य के मार्ग में हमें आगे ले जाए, ऐसा उपदेश, मिथ्या के मार्ग पर नहीं, असत के मार्ग पर नहीं। तो अधिकतर हमें असत उपदेश मिलता है, मिथ्या उपदेश मिल रहा है, परंतु वास्तवम अत्र वस्तु। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत क्या है? वास्तवम अत्र वस्तु, उस वस्तु के बारे में चर्चा है जो वास्तव में वास्तविक है, जो सचमुच सच है। देखिए फोन, सबके फोन बज रहे हैं एक के बाद एक। आपने फोन देखिए, सबके आपके फोन जिनके पास है जरा निकालिए प्लीज फोन। आप देखो जिनके पास भी फोन है आप अभी निकालिए अपने जेब से और देखिए बंद है या नहीं है, साइलेंट मोड में है नहीं है। वृंदावन में हमने 500 रुपए फाइन लगाए थे सभी को, लेकिन आप ब्रह्मचारी हैं, आपको क्या फाइन लगे, कहाँ से आप देंगे। भागवत क्लास में जब किसी का फोन बजता था तो हम रसीद बुक लेकर भक्त को बिठाया करते थे, पहले से हम घोषणा करते थे, क्योंकि ये भागवत के प्रति अपराध है। भागवत कथा हो रही है सुबह और लोगों के अलग अलग तरह के संगीत वहां शुरू हो गए, तो 500-500 रुपए फाइन लगा के अच्छा खासा जो है धनार्जन हुआ करता था, लक्ष्मी सेवा हो जाती थी। लेकिन ब्रह्मचारियों से क्या ले सकते हैं? मोबाइल ले सकते हैं, तो आजकल तो असत उपदेश मिल रहा है, सत उपदेश नहीं मिल रहा है। और जहां तक सत उपदेश की बात है, जनसाधारण में जो एक धारणा है सत उपदेश की कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यह भी एक सत उपदेश है, परंतु ये पुण्य के मार्ग पर है, नैतिकता के स्तर पर है। यह भी जरूरी है, आवश्यक है संसार में, नहीं तो सभी लोग झूठ बोलते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, तो कैसे समाज चलेगा, दुष्ट हो जाएंगे सभी लोग, और दुष्ट वृत्ति फिर भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो सकती। ये भी सत उपदेश है, परंतु जितने भी प्रकार के सत उपदेश हैं उनका सार क्या है वो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। सार है कालम नयेद अखिलम, हमारा जो समस्त समय है, कालम निखिल मतलब सारा समय, हमें एक विशेष कार्य करना चाहिए। अखिलम कालम, सारा समय हमारा है, तन मतलब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, नाम रूप चरित आदि, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण और चरित्र धाम भक्त आदि के बारे में क्या करना चाहिए। सुकीर्तनानो स्मृत्य हो, सुकीर्तन बार बार अच्छी तरह से कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि के बारे में, और अनुस्मृत्य है फिर बार बार स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक बार स्मरण कर लिया, एक बार कीर्तन या श्रवण कर लिया, इतना काफी नहीं है, बार बार करना चाहिए। तो ये अनुशब्द का तात्पर्य ऐसा होता है। अनुशब्द का मतलब ये है कि एक बार हम करें और बार बार करना, ये अनुशब्द कई बार हम सुनते हैं हमारे शास्त्रों में, कई शब्दों में आता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ये अनुस्मरण शब्द कहते हैं, कब कहते हैं, कौन से श्लोक में, माम अनुस्मर युध्यच, कि तुम युद्ध करते रहो परंतु युद्ध करते करते मेरा स्मरण भी किया करो, अनुस्मरण। तो अनुस्मरण का मतलब ये शब्द यहां भी आता है कि बार बार स्मरण किया करो, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर अगले हफ्ते एक बार कर लिया, नहीं, निरंतर करते रहना। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के बारे में हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और ऐसे करते रहने से कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हमने हमारे मन से और हमारे जिह्वा से करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं रसना मनसी नियोज्य, अर्थात अपने जीभ को और अपने मन को हमें भगवान के इस श्रवण कीर्तन स्मरण के कार्य में इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तिष्ठन व्रजे, हमें व्रज में निवास करना चाहिए। और व्रज में निवास करके क्या करना चाहिए, तद अनुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी जन, तो भगवान के जो अनुरागी जन हैं, अनुराग मतलब जिनका जिनके हृदय में बहुत तीव्र आसक्ति है भगवान के प्रति, उसको राग कहते हैं। तो जो अनुरागी भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति तीव्र निष्ठा है, जो बहुत आसक्त हैं भगवान से, ऐसे भक्तों के का अनुगमन हमें करना चाहिए, उनके अनुगामी हमें बनना चाहिए। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, तो जो अनुरागी जन हैं उनका अनुगमन हमें करना चाहिए व्रज में रह के। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, तो ये उपदेश का सार है कि हमें 2400 घंटे व्रज में निवास करके एक ऐसे कृष्ण के प्रति जो अनुरागी भक्त है, आसक्त भक्त है, ऐसे भक्त का अनुगमन करते हुए श्री कृष्ण के गुण, रूप, लीला, चरित्र आदि के बारे में स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना, कीर्तन श्रवण आदि करना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं। अब ये तो गृहस्थों के लिए संभव नहीं है साधारण तौर से, क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और हम सोचेंगे कि ब्रह्मचारियों के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है तिष्ठन व्रजे, कि हमें ब्रज में रहना चाहिए। तो हर एक मंदिर में सभी ब्रह्मचारी कहें कि हम तो वृंदावन जाएंगे, रहेंगे, हम तो बंबई में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में नहीं रहेंगे, चेन्नई, बेंगलोर जो भी है वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा है तिष्ठन व्रजे, कि व्रज में रहना चाहिए। तो हम सब जाएंगे वृंदावन में रहने के लिए। तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के लिए तो संभव नहीं है। प्रभुपाद जी तो वृंदावन छोड़ के गए ना अमेरिका, चाहते तो अपने बुढ़ापे में वहां आराम से रह जाते और जीवन के अंत में फिर भगवान के धाम में चले जाते। क्या कठिनाई थी उनके लिए? सारी व्यवस्था थी, दो कमरे थे, जो दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान है, जो निधि वन है, वहां रह के, सेवा कुंज है, वहां रह के राधा दामोदर जी के शरण में, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी के शरण में रह के वो अपना जीवन तो आराम से बिता सकते थे। परंतु वृंदावन छोड़ के वो चले गए अमेरिका। क्यों चले गए? सारे दुनिया में वृंदावन की चेतना को फैलाने के लिए। वो चले गए वृंदावन, वृंदावन के बाहर ले जाने के लिए। तो वृंदावन अवश्य एक भौगोलिक स्थान तो है ही, दिल्ली से 2 घंटे, कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर, हाँ ये एक भौगोलिक स्थान है अवश्य। परंतु सबसे अधिक महत्व की बात ये है कि वृंदावन एक चेतना का स्तर है, एक चेतना की अवस्था है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और कोई व्यक्ति यहां बैठ के भी, जिनको फोन लेना है वो नहीं, उठ के फोन ले जा रहे हैं, ये आदत सबको छोड़नी चाहिए। हाँ, क्लास में आएंगे तो फोन बंद करना चाहिए, और बीच में अभी फोन आया और निकल के चले गए, ऐसे अच्छा नहीं है। ब्रह्मचारियों के लिए कम से कम इतना डिसिप्लिन या संयम होना चाहिए, ठीक है ना? जो जिन सुनना चाहते हैं अभी फोन बंद करके, आप जो भी आए आप कृपया बता दीजिए। तो ये वृंदावन जो है, व्रज जो है, ये चेतना की अवस्था भी है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि यदि कोई निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वो व्रज में निवास करता है। यदि कोई भौगोलिक व्रज में जाए उसमें भी बहुत सारा लाभ है अवश्य, क्योंकि व्रज का रज है, उसका स्पर्श करेंगे, वहां का एक माहौल है वो भी बहुत विशेष है। तो इसलिए व्रज में रहने से जो लाभ होगा वो तो अवश्य बहुत विशेष है। परंतु वहां व्रज में रह के यदि कृष्ण भावनामृत में हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या लाभ? बल्कि हम वहां कोई अपराध कर बैठेंगे धाम के प्रति, भगवान के प्रति, और ये तो अच्छा नहीं होगा हमारे भक्ति के लिए। दूसरी ओर यदि कोई भौगोलिक व्रज से बहुत दूर भी रह रहा हो परंतु सदैव कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के स्मरण में हो, तो वो व्यक्ति बल्कि व्रज में निवास कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि केवल शारीरिक रूप से व्रज में रहने की बात नहीं हो रही है। यहां पर आचार्यों ने टीका किया है, अपने टीका में कहा है कि व्रज चेतना की अवस्था है, इसलिए वृंदावन उस स्थान, उस व्यक्ति के लिए वृंदा वृंदावन का वास जो है उस व्यक्ति के लिए संभव है जो सतत कृष्ण भावनामृत में रहता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम जब यहाँ बैठेंगे तो हम ब्रज में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 2400 घंटे भगवान की सेवा में रहते, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए और हम क्या करेंगे? दूसरे कोई काम तो है नहीं हमारे पास, केवल कृष्ण की सेवा ही करेंगे। और ये भगवान का मंदिर है, ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भगवान कृष्ण का मंदिर होता है वो भी व्रज है, वो भी वृंदावन है। प्रभुपाद जी बताया करते हैं कि जो मधुशाला आदि होते हैं, शराब के घर होते हैं, वैश्या घर होते हैं, वो सब तमोगुण में होते हैं। जो शहर आदि होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। और जो ग्रामीण इलाका होता है, वन का विभाग होता है, वो सब सत्वगुण में होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर होता है वो निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, वो साक्षात आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है। तो इसलिए वो साक्षात वृंदावन या वैकुंठ माना जाता है। तो अभी ब्रह्मचारी जो होते हैं वो आश्रम में रहते हैं, आश्रम अर्थात जो मंदिर में स्थित हो, अर्थात ब्रह्मचारियों का निवास स्थान वृंदावन है। तो वृंदावन में वास करने के कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में जाके निवास करना, लेकिन ये तो सभी के लिए संभव नहीं है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग जाके वहां रहते तो प्रचार का आंदोलन फैलता कैसे? यदि सभी लोग, यदि प्रभुपाद जी भी वृंदावन में ही रहते, क्या आज हम लोग भक्त बने हुए होते? नहीं। प्रभुपाद जी वृंदावन से बाहर निकले, इसलिए तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना हुई और ये कृष्ण भावनामृत का संदेश सारी दुनिया में फैल गया और लाखों लाखों लोग भक्त बन गए और आने वाले सालों में भी बनेंगे। तो प्रभुपाद जी नहीं गए होते, केवल वृंदावन में ही शारीरिक रूप से ही रहे होते तो आज ये चमत्कार दुनिया में नहीं हो पाता। और उनके जो भक्त बने वो भी यदि जगह जगह जाकर प्रचार नहीं करते तो आजकल हम लोग यह नहीं होते, भक्त नहीं बनते हम लोग। हम लोग भी न जाने कहां संसार में अटक के पड़े हुए होते। तो हालांकि व्रज में निवास करना ये बहुत लाभदायक है और इसकी महिमा का वर्णन अनेक आचार्यों ने की हुई है, शास्त्रों में ऐसे वर्णन पाया जाता है। खास करके प्रबोधानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत महिमा व्रज के वास के महिमा का वर्णन किया हुआ है। लाभ तो अवश्य है, रूप गोस्वामी भी कहते हैं, परंतु ये एक है, जब तक कि गुरु का आदेश नहीं मिलता है कि तुम जाके वृंदावन में रहो तब तक नहीं रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इनको प्रत्यक्ष रूप से स्वयं आदेश दिया था कि आप जाके वृंदावन में रहो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रत्यक्ष स्वप्न में आके नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि आप जाओ, तुरंत जाओ वृंदावन में जाओ। तो इस तरह के आदेश जिनको मिलते हैं उनके लिए व्रज ठीक है। बिना आशीर्वाद के, बिना आदेश के अपने मनमाने ढंग से कोई उठ के चले जाए, हम इस मंदिर को छोड़ के जाएंगे, हम वृंदावन में जाके रहेंगे, ये खास करके ब्रह्मचारियों के लिए उचित नहीं है। आशीर्वाद के बिना भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। और हम चले भी जाएं शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से हमें सच्चे वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा। देखिए हमारा जो भक्ति का रास्ता है ये कृपा और आशीर्वाद के ऊपर निर्भर होता है, और हाँ हमारे प्रयास पर भी निर्भर है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा मिलेगी कैसे। प्रयास तो करना है, परंतु प्रयास के साथ साथ यदि कृपा और आशीर्वाद न हो तो हमारा प्रयास निष्फल रहेगा। तो खैर, वृंदावन में वास करना उन लोगों के लिए है जो जाके गुरु के आदेश का पालन करना चाहते हैं और जो सेवा करना चाहते हैं। केवल भक्ति का भोग करने के लिए भी वृंदावन नहीं है, वहां जाके हम खूब सुखी होकर रहेंगे। नहीं, भक्ति सुख के लिए नहीं है, भक्ति त्याग के लिए है, सेवा के लिए है, ताकि अन्यों को वास्तविक सुख मिले, कृष्ण भावनामृत के अंतिम उद्देश्य की जानकारी मिले सारी दुनिया को। तो फिर जो लोग रहते हैं वृंदावन में उनके लिए ठीक है, वो वहां रहें, वहां सेवा करें। और दूसरी बात, जो वृंदावन में नहीं रह सकते हैं वो मंदिर में रहें, चाहे बंबई में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, जहां भी हो, लंदन में हो, जहां भी हो वो वहां रहें और मंदिर में रहें। बार बार अंदर बाहर जाना ठीक नहीं, हाँ डिस्टर्ब होता है क्लास। यहाँ केवल एक बार आए अंदर, आप यहाँ बैठें, उठना जाना है तो फिर नहीं आना ठीक है, हाँ एक संयम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अंदर बार बार आना जाना करने से जो बैठे हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है, जो वक्ता होते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। तो सारे क्लास में ऐसे एक संयम हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जो लोग व्रज में नहीं रह सकते या जिनको आदेश नहीं मिला है, तो दूसरी बात उनके लिए ये है कि वो ऐसे मंदिर में रहें। अब मंदिर में कौन अच्छी तरह से रह सकते हैं? ब्रह्मचारी लोग रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इतना सा जगह मिल गया, बस 6 फुट बाय 6 फुट जगह मिल गया, काफी हमारे लिए, बस सो गए, रात को सोना का ही समय है ना, बस प्रसाद की व्यवस्था है, कपड़े मिल रहे हैं, कितने 2-4 कपड़े चाहिए वो मिल गए, दिन में 2-3 बार का प्रसाद मिल जाता है और दिन भर का आनंद मिल जाता है, जप में, कीर्तन में, कथा में, सेवा में, प्रचार में, बस ब्रह्मचारी जी, इसको तिष्ठन व्रजे कहते हैं। परंतु गृहस्थों को इस तरह से करना आसान नहीं है, अपने अपने घरों में रहना पड़ता है, और एक बार वहां रह गए, देखो फिर से उठ के कौन जा रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं है, हा? एक बार नहीं तो नहीं आना चाहिए, उनको बाद में बता देना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी घोषणा करने के बाद भी उठ के जा रहे हैं, तो नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसे नहीं बोलेंगे तो लोग सीखेंगे नहीं ना, फिर किसी को तो ऐसे कहना चाहिए। ब्रह्मचारी खास करके डिसिप्लिन होना चाहिए सभी को। हम यूरोप में भी देखते हैं, पहले की बात ऐसे हुआ करते थे कि केवल विदेश में हम ऐसे देखा करते थे, भारत में ऐसे नहीं उठ के जाता था कोई बीच में, आजकल हम भारत में भी देख रहे हैं। और विदेश में ऐसे हैरानी की बात होती है कि एक सन्यासी बोल रहे थे, एक बार हुआ ये कि लंदन में एक नदी है थेम्स, तो भक्तों ने एक बार एक यात्रा की योजना की, सारे जो भक्त थे वो एक जहाज में गए, नौके में, थेम्स के ऊपर 4 घंटे केवल आना जाना, उसमें बहुत कीर्तन सत्संग ये सब हुआ। तो एक सन्यासी अपने प्रवचन में जब वो जहाज में बैठे हुए थे बोल रहे थे, ये मेरे जीवन में पहला प्रवचन है जिसमें कोई उठ के चला ना गया हो। समझे आप? उठ के कहां जाएंगे? अब ये बुरी आदत भारत में भी आ गई है, अभी हम देखते हैं, जब मन में चाहे उठ के बस उठे निकल गए। अरे भाई ये कोई प्रवचन हो रहा है, कोई कथा हो रही है ना, तो ऐसे नहीं कि जब मन में आए कुछ भी करें। डिसिप्लिन ना हो तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। मन को नियंत्रण नियंत्रित करना है तो मन के वेग को थोड़ा संभाल लेना चाहिए। और यदि कोई, हाँ अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं मंदिर में आग लगी और बैठे नहीं कथा चल रही उठ नहीं सकते, ये भी मूर्खता होगी है ना। कोई बहुत अचानक आपातकालीन स्थिति में कुछ भी हो करना चाहिए, परंतु यदि आपातकालीन स्थिति न हो तो फिर अपने आप को संभाल लेना चाहिए, सही है ना। तो ये सब वृंदावन की बात कर रहे हैं कि यहाँ रह के मंदिर में रहना भी ये व्रज का वास है, क्योंकि वृंदावन ये जहाँ कृष्ण है वहाँ वृंदावन है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना आसान है रहना। अब जब गृहस्थ होते हैं तो उनके फिर पत्नी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, मंदिर में रहना मुश्किल हो जाता है। भले वो मंदिर में सेवा भी करें परंतु मंदिर में रहना मुश्किल हो जाता है। जगह चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ब्रह्मचर्य के लिए क्या सुविधा चाहिए, बहुत सरल जो भी चीजें हैं जितने, थोड़ा बहुत जगह चाहिए सोने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े बस। इसलिए ये सब ब्रह्मचारियों के लिए, ये जो श्लोक है रूप गोस्वामी का, ब्रह्मचारियों के लिए इसका पालन करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात कि भले हम 24 घंटे कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए ना तो कोई नौकरी है, ना तो कोई व्यवसाय है, ना तो कोई अपने घर के कार्य वगैरह करने हैं उनको, और ना उनको कोई विश्वविद्यालय में जाके या स्कूल में जाके कोई पढ़ाई करनी है, बस 24 घंटे कृष्ण की सेवा ही करनी है। इसलिए ये बिल्कुल उपयुक्त है ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ये श्लोक। इसलिए इस श्लोक को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कृपया आप जाके आज यदि समय मिले तो आप उपदेश अमृत के इस श्लोक को पढ़िए और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी पढ़िए। तो ये श्लोक हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, बल्कि ये हमारे जीवन का ध्येय है, गंतव्य हमारा ये है कि 2400 घंटे हम भगवान कृष्ण के बारे में सुने, बोलें, कथा करें, उनकी सेवा करें। सेवा भी तरह तरह की हो सकती है, श्रवण कीर्तन भी एक प्रकार की सेवा है, और यदि हमें बताया जाए कि मंदिर साफ करो तो वो हमारी सेवा है, अर्चा विग्रह की सेवा करो तो वो हमारी सेवा है। जो हमें बताया जाए ब्रह्मचारी आश्रम में हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, बड़े लगन से करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए अधिक कोई अवसर नहीं होता ब्रह्मचारी जीवन में। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम ज्यादा स्वतंत्र न बन जाएं। स्वतंत्रता आने से क्या होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में रुचि फिर कम होने लगती है। ब्रह्मचारी आश्रम में चाहिए कि व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से शरणागत करे। और हाँ, जो फिर अधिकारी है वो तो देखेंगे ना, यदि किसी को कोई समस्या है क्या है उसके लिए कोई व्यवस्था कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु ब्रह्मचारी की चेतना ऐसे होनी चाहिए कि हमारे तो 24 घंटे इसमें लग गए भगवान की सेवा में। तो इसलिए आप कृपया इसको मन ध्यान में रखिए। बहुत अच्छा अवसर है सबके लिए रूप गोस्वामी के इस श्लोक का आचरण करने के लिए हमारे जीवन में। अन्यों के लिए वैसे देखा जाए तो संभव है, कोई गृहस्थ रह के भी कर सकते हैं अवश्य, और हमारे कितने सा अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्त भी हैं इस संस्था में भी और बाहर भी, परंतु उनके लिए मुश्किल है ज्यादा करना, ब्रह्मचारियों के लिए आसान है हर दृष्टि से। तो इस ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जो आगे चल के ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के जाते हैं किसी भी कारण से, गृहस्थ भी बन जाते हैं, वो भी ठीक है, जिनको बनना है वो बन सकते हैं, वो भी एक सम्मान का स्थान है, वो भी एक आश्रम ही है। परंतु फिर वो याद करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के दिनों को, हम लोग यहाँ कितने आसानी से रहा करते थे और कुछ हमारे पास चीज़ें थी नहीं, बस गिने चुने चीज़ें थी, उसमें हम कितने सुखी रहते थे। अब जब हम गृहस्थ बने तो जितने सारे संसार के वस्तुएं आगे फिर भी नहीं हो पा रहे हैं संतुष्ट। कितना सरल जीवन हो जाता है ब्रह्मचारी आश्रम में। परंतु एक बार गृहस्थ आश्रम में जाने से फिर जटिलताएं बहुत बढ़ने लगती हैं। कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और ये कल्पना कीजिए, जैसे अभी ब्रह्मचारी आश्रम में या 20 लोग हों, 50 भक्त हों, 100 लोग हों, कितने छोटे जगह में रहते हैं। अभी 100 गृहस्थ लोग ऐसे रह सकते हैं उतनी जगह में, मतलब अपने परिवार के साथ? संभव ही नहीं है। ब्रह्मचारी लोग आसानी से रह पाएंगे, एक कमरे में 6 ब्रह्मचारी रह जाएंगे, लेकिन एक कमरे में 3 गृहस्थ लोग रह सकते हैं, मतलब पति पत्नी मिल मिलकर, पति पत्नी पति पत्नी ऐसे दंपति 3-4 ऐसे एक कमरे में रह सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। लेकिन 8-10 ब्रह्मचारी एक कमरे में आराम से रह जाएंगे। तो ये एक सरल जीवन है, बहुत अच्छा अवसर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कृपया इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाइए। और यहाँ भी प्रभुपाद जी की कृपा से कितनी अच्छी सुविधा है। प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी मंदिर के ऊपर कितना जोर दिया था, कितनी तपस्या की थी प्रभुपाद जी ने इस मंदिर की स्थापना करने के लिए। आप सब ने सुने होंगे कथाएं प्रभुपाद जी के उन दिनों के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने अपने प्राण दिए यहाँ इस प्रकल्प और इस मंदिर की स्थापना करने में, ताकि हम सबको ऐसी सुविधा मिले कि हम आराम से रह के 24 घंटे भगवान की सेवा कर सके। और प्रभुपाद जी के बाद भी कितने ऐसे भक्त रहे और आज भी हैं जो हमारे आध्यात्मिक सुविधा के लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो अभी हमें भी अन्यों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ऐसी एक सुविधा करनी चाहिए, ऐसे एक माहौल वातावरण निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी लोग बड़े अच्छी तरह से आराम से रह के भक्ति कर सकें, प्रचार कर सकें इत्यादि। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? चलो इस बार थोड़ी 2-4 बार डांट भी सुना दी हमने। ऐसे कभी हम ज्यादा डांटते नहीं है, ये बिरला ही ऐसे हो जाता है। हम देखते हैं, हमने सोचा कि जरूरी है हमारे लिए ऐसे बोलना। ये बड़े शहरों में हमने देखा है ज्यादा होता है, बड़े शहर में वातावरण ऐसा होता है ना, दिल्ली बंबई, उठने बैठने वाली बातें ज्यादा इन बड़े शहरों में होती हैं। हम एक बार एक कथा में बैठे थे, कक्षा में भागवत क्लास चल रहा था सुबह, एक सामने वाला भक्त जो है प्रवचन शुरू हुए 5 मिनट हुए थे बस, सामने बैठे उठे चले गए। तो वक्ता बेचारे इतने, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उनको बुलाया वापस, भाई हमने कुछ बुरी बात कही क्या, कुछ बुरा लगा क्या आपको कि इतना उठ के चले गए हो, 5 मिनट भी नहीं हुए प्रवचन में? तो सभी लोग हंसने लगे। नहीं नहीं मुझे जाना है कोई काम से। तो भाई पहले पता नहीं था क्या जाना है, कोई काम है पता नहीं था पहले, अभी अभी पता चला कि निकलना है। क्योंकि दूसरे जो बैठे होते हैं उनको भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो सुनने के लिए आए हैं, और कोई उठेंगे बैठेंगे आएंगे जाएंगे, ये सब ट्रैफिक होता रहेगा। हाँ बाहर का ट्रैफिक काफी है ना, अब अंदर तो शांति से सभी बैठ के सुनने। एक या दो प्रश्न लेंगे क्योंकि हमें भी आगे जाना है. यस, ही इज आस्किंग क्वेश्चन.
हरे कृष्ण महाराज.
हरे कृष्ण.
Please, I can speak only in English because
no problem. You can go ahead.
I am from Nigeria, and I will tell you that in the whole of Nigeria, we have less than 10 brahmacharis, and the rest of the devotees are grihasthas. In that place, it's very difficult to practice brahmacharya because here in India, when people see brahmacharis, they are very happy. And even the women, they avoid them. But in Nigeria, it's the other way around. When they see you are trying to practice austerity, every one of them will be on you. They just want to bring you down. So my question is, how is it possible? What advice will you give, people like us who stay in those areas and is, trying to be brahmacharis?
So the question is that we नाइजीरिया अफ्रीका में रहते हैं जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचारी बनना बहुत मुश्किल है. यहाँ भारत में भी मुश्किल है परंतु एक संस्कृति यहाँ बनी हुई है. लोग सम्मान करते हैं किसी ब्रह्मचारी को देख के. जो महिलाएं हैं माताएं हैं उनको भी पता होता है कि ब्रह्मचारियों के पास में नहीं जाना चाहिए. एक मर्यादा होती है वो जानते हैं इसके बारे में. परंतु हमारे देश में वो कह रहे हैं उनके देश में नाइजीरिया वगैरह में महिलाओं को ऐसे कोई संस्कृति नहीं कोई मर्यादा कुछ नहीं. जैसे वो देखेंगे कोई बेचारा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो जानबूझ के उसको हैरान करने जाएंगे उसका पतन कराने के लिए वो जाएंगे. तो हम जैसे लोग हैं जो ऐसे देशों में ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए क्या सलाह है आपकी, ये इनका प्रश्न है. तो यही है कि अपने साधन भजन को श्रवण कीर्तन को हमें बनाए रखना चाहिए. जिस श्लोक का उल्लेख हमने अभी किया उपदेश अमृत से उसी श्लोक को हमें करने का प्रयास करना चाहिए. यदि हमारा श्रवण कीर्तन मजबूत हो हमारी साधना मजबूत हो तो फिर हम कहीं भी रह पाएंगे. उसके बिना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो ये सबसे पहली बात है. माया का सामना करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है वो हमारे श्रवण कीर्तन से आएगी सर्वप्रथम. दूसरी बात, जो गिने चुने ब्रह्मचारी हैं भी केवल 10 ब्रह्मचारी सारे नाइजीरिया के देश में है वो कह रहे हैं कुल मिलाकर 10 ब्रह्मचारी एक देश में. कल्पना कीजिए कितना मुश्किल होता होगा वहां सारे देश में केवल 10 ब्रह्मचारी. तो खैर, तो जो गिने चुने ब्रह्मचारी भी हैं उनके बीच में बहुत एकता होनी चाहिए दोस्ती होनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के लिए. तीसरी बात, जो अन्य भक्त हैं जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी मदद करनी चाहिए ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी रहने के लिए. ताकि क्योंकि वो भक्त हैं कम से कम वो तो जानते हैं कि मर्यादा क्या है वो तो जानते हैं कि इसका महत्व क्या है. तो चाहे वो मंदिर के अध्यक्ष हों या कोई और भी वरिष्ठ भक्त हों उनसे बात करके हमें ये निवेदन करना चाहिए कि आप सारे भक्तों में ऐसे कुछ एक संस्कृति निर्माण कीजिए जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम को कोई महत्व दिया जाएगा जो मर्यादा है उसका पालन किया जाएगा तो थोड़ा कम समस्याएं कम हो जाएंगी. ये तीसरी बात है. चौथी बात है कि अपने आप भी सावधानी रखनी चाहिए. जब हम बाहर जाते हैं भले सामने वाले व्यक्ति जो हैं वो आके हमारे साथ ठीक से बर्ताव न करें वो कैसे बर्ताव करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है परंतु हम कैसे बर्ताव करेंगे वो हमारे हाथ में है ना. तो यदि हम बाहर प्रचार के लिए गए हैं, कोई माता जी आके किसी अनुचित ढंग से बात करे या व्यवहार करे हमसे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहे वो भक्त भी कोई माता जी क्यों ना हो, तो हमें अपने तरह से अपने मर्यादा का पालन, अपने नियम का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। और अंतिम भगवान से तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जितने भी बातें हमने नाइजीरिया के लिए बताई हैं, वो भारत के लिए भी लागू होती हैं। यहां भी कोई अभी अवस्था इतनी अच्छी भी है नहीं, भारत भी विदेश की तरह ही होने लगा है हर दृष्टि से, वो संस्कृति नहीं रही। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न। हाँ ये भौतिक जगत ही एक चुनौती है। जहां भी हम जाएंगे चुनौती ही चुनौती, सब जगह, कहीं भाग के जा नहीं सकते। चुनौतियां आएंगी, भौतिक जीवन जब ये शरीर मिला है तो एक के बाद एक लगातार चुनौतियां आती जाएंगी। इसलिए हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, या तो हम चुनौती के सामने डर के हम भाग जाएं, भागने से क्या होगा, हार जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत में। एक कृष्ण भावनामृत पद्धति से, रीति से इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो। एक भक्त को कैसे इस परिस्थिति में बर्ताव करना चाहिए, भक्त की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए उस समय, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे एक माता जी आती हैं, बात करती हैं, चुनौती है एक तरह की, तो कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। ये माता जी हैं, माता जी, माँ है, माँ के समान एक मानसिकता है। फिर व्यवहार कैसे होना चाहिए, थोड़ा संभल के बात करना चाहिए, अकेले में नहीं बात करना चाहिए। तो हर एक जो अलग अलग तरह के चुनौतियां होती हैं, उनका सामना करने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, परंतु उनके पीछे जो भावना है वो एक ही होनी चाहिए। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, वैष्णवों का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जो भी मेरे लिए उचित मर्यादा है, नियम है, इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहिए, चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। चुनौतियां तो आने ही वाली हैं, एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अच्छी तरह से रहिए आश्रम में रहकर, या जो आप में से आश्रम में आना चाहते हैं, और अच्छी तरह से सेवा साधना आदि कीजिए, बड़े प्रेम की भावना से, बड़े सहयोग की भावना से, कोऑपरेशन से रहिए, और अपना जीवन सफल बनाइए, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हृदय पूर्वक मदद कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। Srila Prabhupada ki jai.